Haji. Haji utho na. Khuda ka vaasta hai Haji utho. Utho na Haji.
देखा कितनी जल्दी गुजर गया जी।
हाँ, ऐसा लगता है कल ही था।
काश सब लोग समझते कि पलक झपकते ही उनकी बीमारी आ जाएगी। ये दिन याद है कि नहीं हाजी?
बाबा के इंतकाल का दिन?
नहीं, उसके दो हफ्ते बाद।
उसके दो हफ्ते बाद?
पता साहब, क्या आप यहाँ हैं?
जी, कुछ पुराने सामान देखने के लिए आया था।
माफ कीजिएगा आपको डिस्टर्ब किया। आपका फोन है तेहरान से।
तेहरान से? कहिए कि अभी आता हूँ।
मुझे खूब मालूम है कि क्या किया था।
मैं इस घर का छठा हिस्सा शरीफा के नाम करता हूं। मैं तुमसे राजी नहीं होऊंगा।
अब एक हफ्ते लेट ही जाते हैं।
नहीं अम्मी जान, फैक्ट्री की हालत ठीक नहीं है। मुस्तफ़ी को अटैक हो गया है। उसके पार्टनर ने उसे दूर देखकर और ये देखकर कि मैं नहीं हूँ, मेरी जगह किसी और को बिठा दिया है।
ये तो बेहतर है, शायद इसी में कोई मसलहत हो। अपने आप को अनजान शहर में मसरूफ करने का क्या फ़ायदा?
नहीं अम्मी जान, मैंने बहुत मेहनत की है। अब जब वहां मेरी जगह मजबूत हो रही है तो क्यों पलट कर यहाँ आ जाऊं?
क्यों? इसलिए कि अपने बाप की जमीन पर काम करूं। तुम्हारे मरहूम बाप के पास क्या कम था? माली हालत तो ठीक थी। बेटा फतेह, मेरे खातिर यहीं रुक जाओ। उनके घर को भी रोशन रखोगे और उनके चलम के बाद शरीफा से भी शादी कर लेना, ताकि वो मरहूम भी।
अम्मी जान खुदा के लिए बस कीजिए, मैंने बड़ी मुश्किलों से बाबा जान को राजी किया था, खुदा के वास्ते आप शुरू मत कीजिए।
जाओ तो मैं खुदा के हवाले करती हूँ।
कोई हुक्म तो नहीं अम्मी?
नहीं बेटा, खुदा हाफिज।
शरीफा, बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारी सारी मेहनतों का। अपना और अम्मी का ख्याल रखना।
ठीक है फत्ता साहब, आप परेशान न हो, फी अमानिल्लाह।
ये औरत तुम्हें चाहती थी, काश तुम समझते कि उसके साथ तुमने क्या किया।
शरीफा तुम्हारी बहन जैसी है, मैं इस घर का छठा हिस्सा शरीफा के नाम करता हूं।
आया? सलाम अलैकुम, खुश आमदीद।
अलैकुम सलाम।
अन्नत तशरीफ ले चलिए।
आप चलिए, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हो गया आपको?
अलैकुम सलाम बेटा, खुश आमदीद। ये सादिक है मेरा बेटा, और ये आफाक है मेरी बेटी, और ये फत्ताह साहब हैं जिनका तज़किरा मैंने किया था।
खुश आमदीद।
बहुत बहुत शुक्रिया, जहमत हुई।
कैसी जहमत? शुक्रिया जो इस हाल में भी यहाँ पे आए।
ये कैसी बात है, मेरा फर्ज था।
खुदा तुम्हारे बाप की मगफरत करे, उनके जनाजे में आना चाहता था, लेकिन मेरी हालत तो देख रहे हो ना।
कोई बात नहीं जनाब, सुना आपकी तबीयत खराब, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मुझे बेहतर लग रही है।
हाँ, एक परेशानी थी जो आई चली गई। मैंने इसीलिए तुमको यहां बुलाया है। बैठो बेटा।
आप बैठिए भैया, आओ चलते हैं, बाबा जान की मेहमान है।
सर ये क्या हो गया है? ये आपकी बीमारी की हालत और वो फैक्ट्री की कंडीशन, बजाय कोई चीज नॉर्मल लगी नहीं रही है। उस कलानी ने भी किसी को मेरी जगह बिठा रखा है, वो तो छोड़िए। इसके अलावा मैंने सुना है कि उसने सब कुछ अपने हाथ में ले लिया और सियाह सफेद का मालिक बन बैठा है।
खुदा उसे गारत करे। मैं नहीं जानता था कि अपने आसीन में सांप पाल रहा हूं।
आखिर हुआ क्या है, वो क्यों अपने आप को फैक्ट्री का मालिक समझने लगा है?
उसका पहले से यही प्लान था, मैं बेवकूफ था।
मैं समझ नहीं पाया, क्या वो आपकी बीमारी से फायदा उठाना चाहता है?
बहुत दिनों से कर रहा था, अब तो खुलने लगा है।
वो कैसे?
वो 2 साल पहले जो फैक्ट्री में आग लगी थी याद है?
जी, क्या आप कहना चाहते हैं कि?
वल्लाह आलम, खुदा जानता है कि उसका काम था या नहीं, लेकिन ये सब उसी वक्त से शुरू हुआ कि जब फैक्ट्री में आग लगने से मैं जमींगीर हुआ था। आज ही फैक्ट्री जल चुकी थी, अगर बेतवज्जुही की होती तो मेरा काम तमाम हो चुका था। वो सब चीज़ें पहले की तरह करने के लिए पैसों की ज़रूरत थी। उसी दरमियान मुझे कलानी के पास जाना पड़ा। मजबूर होकर उससे कर्ज लेना पड़ा और वो भी फौरन मान गया और कहा कि वापस करने की भी ज़रूरत नहीं है, हम पार्टनर हैं और बाद में देख लेंगे। लेकिन मैं बेवकूफ़ नहीं समझ पाया, वो जहरीला सांप मुझे और मेरी ज़िंदगी कैसे डस रहा था।
तो क्या इस वक्त आप कलानी के मकरूज हैं?
फैक्ट्री क्या आधा हिस्सा, लेकिन काश सिर्फ यही होता। तुम्हारे ख्याल में मुझे क्यों अटैक हुआ? मेरी गैरत मुझसे आफाक का हाथ मांग रहा है ताकि तमाम कर्जा माफ कर सके।
आफाक साहिबा, उस कमबख्त की उम्र तो इनके 3 गुना होगी।
मैं अपनी बेटी का जनाजा भी उसके हवाले न करूं, और वो ये जानता है और इसीलिए हद से बढ़ गया है। उसे पता है अपने कर्ज की अदायगी के लिए मुझे फैक्ट्री भी बेचनी पड़ेगी।
सर ये काम मत कीजिएगा, ये कमबख्त आदमी तो इस वक्त भी सभी का माल हड़प चुका है।
वो फैक्ट्री और ये घर जो हमारा साहिबान भी है बैंक के पास गिरवी है।
तो आप क्या करना चाहते हैं?
इसीलिए तुम्हें यहाँ बुलाया है। अब तुम ही जानते हो कि मैं कोई ऐसा शख्स नहीं हूँ कि हर ऐरे गैरे के सामने हाथ बढ़ाऊँ, लेकिन क्या करूँ, अब मेरी बेटी पर उसकी बुरी निगाह है। तुम भी कोई गैर नहीं हो, तुम मेरे बेटे जैसे हो।
मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ सर?
मुझे तुमसे एक बात करनी है। जब सुना तुम्हारे बाबा मरहूम हो चुके हैं और इस दुनिया में नहीं है, तो मैं सोच रहा था कि तुम्हारे पास कुछ पैसे होंगे कि जिससे तुम मेरी मदद कर सको। मैं तुमसे कर्ज नहीं चाहता, मैं हाजिर हूँ कि अपना आधा हिस्सा जो उसे देने वाला था वो तुम्हें दे दूँ, और मेरे हिस्से में से जो चाहो ले सकते हो। तुम्हारी जो भी शर्त होगी मैं मानने को तैयार हूँ, लेकिन मेरी मदद करो इस यासीन के सांप को सबक सिखा सको ताकि उससे छुटकारा मिले।
सर मेरे बस में जो कुछ भी होगा मैं करने के लिए तैयार हूँ। मुझे अपने वालिद मरहूम से मीरास में 2 चीज़ें मिली हैं, एक बाग और एक घर। अलबत्ता उसमें भी किसी के साथ शरीक हूँ मैं।
फता।
शरीफा तुम्हारी बहन जैसी है, मैं इस घर का छठा हिस्सा शरीफा के नाम करता हूँ, मैं तुमसे राजी नहीं होऊंगा।
मैं आपसे वादा करता हूँ, आपकी कसम, अम्मी की कसम।
और ये आफाक है मेरी बेटी, मैं हाजिर हूँ कि अपना आधा हिस्सा जो उसे देने वाला था वो तुम्हें दे दूँ, और मेरे हिस्से में से जो चाहो ले सकते हो।
उस दिन उस काम के बारे में सोच रहे थे कि जिसकी वजह से आज फंसे हो। ये उन मौकों में से है जब मैंने तुमको होशियार करने की कोशिश की थी, लेकिन तुमने।
सच बोल रहे हो फता? अच्छा मेरी कसम खाओ।
हाँ अगर वो राजी हो तो।
मैं तुम पे कुर्बान जाऊं बेटा।
फताह साहब, मैं नहीं चाहती कि आप मेरी या बाबा की वसीयत की वजह से अपनी पसंद के खिलाफ।
नहीं तो मुतमईन रहो, ऐसा नहीं है, लेकिन लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं तुमको खुश रख पाऊंगा या नहीं।
तुम झूठ बोल रहे थे फताह। तुमको पता था कि उसका गलत फायदा उठा रहे हो। तुम जानते थे कि उसको खुश नहीं रख पाओगे।
मेरी खुशी आपके साथ रहने में है, ये तो मुझे कहना चाहिए कि आपको खुश रख पाऊंगी या नहीं।
बहुत बहुत मुबारक हो, इंशाल्लाह हमेशा खुश रहो। महजूब साहब की तरवीह रूह के लिए एक सलवात अदा करें।
तुम्हें मालूम है कि इस काम से तुमने कितना बड़ा झूठ बोला है, इस बेचारे के हक में कितना बड़ा जुल्म किया।
मैंने सोचा शायद इस तरह बाबा की वसीयत पर भी अमल हो जाए।
बेचारी शरीफा तो आफाक तक पहुंचने के लिए सिर्फ एक सीढ़ी थी।
शरीफा, मैं बाग को बेचना चाहता हूँ। जानता हूँ कि उसका आधा हिस्सा तुम्हारा मेहर है, लेकिन मुझे पैसों की ज़रूरत है। इस वक्त एक अच्छा मौका मिला है मुझे। अगर कुछ पैसे हों तो मुस्तफ़ी के साथ उसकी फैक्ट्री में पार्टनर बन सकता हूँ। हमारी हालत बहुत अच्छी हो जाएगी। मैं फैक्ट्री के अकाउंटेंट से फैक्ट्री का मालिक बन जाऊंगा। तुम्हारा हिस्सा भी जितना भी होगा हिसाब करके तुम्हारे सामने पेश कर दूंगा, लेकिन बाद में।
मैंने कब अपने हक मेहर की बात की?
बहरहाल मुझ पर यह तुम्हारा हक है। इस वक्त अहम यह है कि तुम राजी हो जाओ ताकि बाग को बेच सकूं। यह एक ऐसा मौका है कि अगर हाथ से निकल गया तो फिर गया।
मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन अम्मी जान की तबीयत ठीक नहीं है, अगर वो सुन ले।
कैसे समझेंगी? अम्मी को इस बात का पता ही नहीं चलेगा। ये मेरे और तुम्हारे दरमियान की बात है, और फिर जब हालात बेहतर हो जाएंगे तो मैं खुद ही उनको मना लूंगा। इस घर को बेचकर हम सब साथ में तेहरान चले जाएंगे।
अम्मी तैयार नहीं हो सकती। उनकी तो उम्मीदें इसी में है कि कब जुमेरात आए और बाबा के कब्र पर जाए।
अब इसके बारे में भी सोच लेंगे। अब तुम ये बताओ कि क्या बाग को बेचने पर राजी हो?
ठंडी ना हो जाए।
तुम सिर्फ उस बाग के चक्कर में थे, बैठकर हिसाब किताब कर रहे थे कि अगर वो बाग जिसका आधा हिस्सा तुम्हारा है बेच दिया तो इससे फैक्ट्री के आधे हिस्से में भी पार्टनर हो जाओगे, और शायद तुम्हारी दिली तमन्ना भी पूरी हो जाएगी जब मुस्तफी तुम्हारे साथ पार्टनर हो जाएंगे और वो अपनी बेटी भी तुम्हें दे देगा। अलबत्ता ऐसा हुआ भी। असल में तुमने एक मामला किया था जी, शरीफा से शादी करके बाग बेचना चाहा और फिर बाग बेचकर आफाक से शादी कर ली।
जो कहना चाहते हो कहो, लेकिन ये बात नहीं कह सकते। मैं मुस्तफी साहब से फैक्ट्री में पार्टनर हुआ था ठीक, लेकिन आफाक के बारे में कुछ शर्त नहीं रखी थी। मैंने उसके सामने ये भी जाहिर नहीं किया कि उसके बाप के कर्ज अदा किए हैं, चूंकि उसे शर्मिंदा नहीं करना चाहता था। मैं नहीं चाहता था कि इस बार कलानी की जगह मुझसे शादी करना पड़े।
तो फिर शरीफा का क्या होगा जो अपना सब कुछ खो चुकी है और तुमने उसका हक मेहर बेचकर दूसरे से शादी कर ली?
मैंने ये सब कुछ उसे बता दिया था।
बताया तो था, लेकिन कब? उस वक्त जब तुम्हारी माँ के गम में डूबी थी, वो भी तुम्हारे बाप की मौत के 6 महीने बाद।
शरीफा, मुझे तुम्हें पहले ही बता देना चाहिए था।
कुछ मत कहो फत्ता, अब कुछ ना कहो। खुदा का शुक्र है कि अम्मी ने ये सब चीजें अपनी जिंदगी में नहीं देखी।
शरीफा,
बाहर निकलो, मुझे तन्हा छोड़ो।
सिर्फ 1 मिनट के लिए मेरी बात सुनो।
बाहर निकलो फत्ता, बाबा और अम्मी की रूह की कसम, अगर तुम्हारे अंदर कुछ भी गैरत है तो मुझे छोड़ कर चले जाओ, तनहा छोड़ कर चले जाओ, सिर्फ चले जाओ। ये मेरी आपसे आखिरी गुजारिश है।
बस भी करो शरीफा, अब तलाक किस लिए?
ये मेरी आखिरी ख्वाहिश है।
देखो, मैं तुम्हें भी चाहता हूँ।
नहीं फत्ता साहब, अपने को धोखा ना दे। आपका दिल दूसरे के पास है, मैं आपकी खुशियों में रुकावट नहीं बनना चाहती हूँ।
लेकिन शरीफा, तुम
ये मेरी आखिरी बात है। यूं आप ही अपनी जिंदगी में ज्यादा खुश रहेंगे। मेरा हक मेहर दे दे, मैं भी आपकी जिंदगी से हमेशा के लिए निकल जाऊंगी।
मेहर? लेकिन मेहर किस लिए?
वो इसलिए कि मेरे सर पर एक छत तो हो जिसके नीचे मैं अपनी जिंदगी गुजार सकूं। ताकि किसी की मोहताज ना रहूं।
ये कैसी बात कर रही हो?
ये मेरी आखिरी बात थी।
इस वक्त मेरे पास पैसे नहीं है, कुछ भी नहीं है।
जी नहीं जनाब, आप इस वक्त एक फैक्ट्री के मालिक हैं। इस फैक्ट्री को खरीदने का आधा पैसा मेरे हक मेहर से दिया है। अलबत्ता यह भी मुमकिन है कि शुरू से ही आपका मकसद शरीफा से शादी करके वो बाग हड़पना और इस यतीम लड़की को बेकस हो यावर करना रहा हो। ऐसा ही है ना फत्ता साहब?
शरीफा, तुम बेकार की बात कर रही हो। मैंने कब तुम्हारा माल हड़पना चाहा? मैंने तो बाग बेचने से पहले तुमसे पूछा भी था।
इंशाल्लाह ये बात भी याद होगी कि आपने कहा था कि ये मेरा हक है आपकी गर्दन पर, और जब मैं चाहूंगी आप मुझे देंगे।
हाँ कहा था, बिल्कुल कहा था, जब होगा तो दूंगा, अभी नहीं है मेरे पास।
तो फिर इंतजाम करें, इस तरह मुझसे भी छुटकारा मिल जाएगा। मैं भी आपसे वादा करती हूँ कि आप एक बार भी मेरा नाम नहीं सुनेंगे।
देखो तो फिर तुम भी गौर से सुनो, तलाक चाहिए ठीक है, जैसा कहो तलाक दे दूंगा, तुम्हारा मेहर भी अदा कर दूंगा, लेकिन जब होगा, इस वक्त न तो है और नहीं दे सकता हूं, इंतजार करना पड़ेगा, इंतजार करो।
फिर झूठ बोल रहे थे हाजी, तुमने 2 दिन पहले ही एक घर खरीदा था और उसका हक मेहर भी तुम वापस कर सकते थे, लेकिन नहीं किया।
असल में मैंने सोचा शायद तब तक अकल आ जाएगी और तलाक की बात भूल जाएगी। मैंने सोचा तहरान में एक घर लेकर अपने पास रख लूंगा।
मेरी आंखों में देखो, ये बात भी जहन के किसी गोशे में रही होगी, लेकिन वो हकीकत जो तुम जबान पर नहीं ला रहे हो कुछ और ही है। हकीकत तो ये थी कि तुम कह नहीं पा रहे थे कि उस घर को जिसमें उसका भी हिस्सा था बगैर इजाजत के बेच चुके थे।
खुदा गवाह है कि मुझे पछतावा था, मैं वापस गया था कि उसे सब कुछ बताऊंगा और उसे अपने साथ ले जाऊंगा, लेकिन नहीं थी। मैंने बहुत ढूंढा लेकिन नहीं मिली।
बिक चुका है लेकिन कैसे बेचा? इस घर में मेरा भी हिस्सा है।
जी हाँ, उन्होंने कहा था कि आपसे पूछ सकते हैं, बाद में कहा था आप शायद गमजदा हैं, तबीयत खराब है और नहीं आ सकती हैं। तो क्या ऐसा नहीं था? अगर اگر آپ کی عزت کے بغیر بیچا ہے تو آپ شکایت کر سکتی ہیں۔
نہیں، کوئی شکایت نہیں ہے۔ یہ گھر بھی خالی کر دوں گی۔
مجھے معاف کیجیے گا میڈم،
اور یہ اس کے حق میں بہت بڑا اصول تھا۔
میں نے اسے بہت ڈھونڈا لیکن نہیں ملی۔ کسی نے کہا کہ اسی یتیم خانے میں ہے جہاں سے بابا نے اسے لیا تھا، وہاں بھی گیا، وہاں بھی نہیں تھی، گویا ہوا میں تحلیل ہو گئی تھی۔ تم تو خود جانتے ہو کہ کبھی وہ میرے دماغ سے باہر نہیں نکلی۔ میں نے اپنے فرض کو اچھی طرح نبھانے کی کوشش کی لیکن کیا بتاؤں۔
ہاں جانتا ہوں، پھر بھی تم بیٹھ کر حساب کتاب کرتے رہے کہ آج کے دن کتنے مقروض ہو، اور اپنے وصیت نامے لکھا تھا کہ صادق کو کیا کرنا چاہیے تاکہ تم سکون سے مر سکو، لیکن اس کے دل کی چوٹ کے بارے میں بھی سوچا؟ اس کی قیمت کا بھی اندازہ؟
بابا میں نے تو خود اتنے زخم کھائے ہوئے ہیں، کم از کم تم تو ان پر نمک نہ چھڑکو۔
تم نے کبھی یہ بھی نہیں سوچا کہ ہو سکتا ہے تمہارے وصیت نامے پر عمل بھی نہ ہو؟
میں نے کیوں نہیں سوچا تھا، تو پھر کیوں میں نے صادق کو اپنا وصی بنایا؟
تم بھول تو نہیں رہے ہو کہ اس سے تم نے بات تک نہیں کی ہے؟ اب تو ہو سکتا ہے تمہارا وصیت نامہ پڑھا بھی نہ جائے۔
کیا مطلب؟
مجھے بہت افسوس ہے سرمد صاحب، میں پہلے بھی آپ سے اور خسرو صاحب سے کہہ چکا ہوں کہ وصیت نامے کو انتقال کے بعد ہی کھولا جا سکتا ہے، اور وہ بھی تمام ورثہ کے سامنے۔ میں تاکید کر رہا ہوں کہ تمام ورثہ،
اور میں چاہتا ہوں کہ سب کے سامنے نہ کھولا جائے۔
تو کیا آپ ابھی کھلوانا چاہتے ہیں؟ مجھے یقین ہے کہ آپ کو علم ہوگا کہ میں قانونی طور پر معذور ہوں۔
قانونی طور پر تو ہاں صحیح، لیکن
جناب
کیا مطلب، کیا کرے گا؟
پہلے تو یہ کام غیر ممکن ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ شاید اس میں لکھی ہوئی باتیں آپ کے مزاج کے مطابق نہ ہو۔
پہلی بات تو یہ ہے کوئی چیز ناممکن نہیں ہے، بس انسان کو اس کی قیمت چکانی پڑتی ہے، اور دوسری یہ کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ کو وصیت نامے میں لکھی ہوئی تمام باتوں کا علم ہے۔
چلیے مان لیتے ہیں۔
اب کیا فرض کرنا چاہیے کامیاب صاحب؟
میں اب اس سے زیادہ کچھ نہیں کہنا چاہتا۔
میں سمجھ گیا، آپ کا ہاتھ قانونی طور پر تھوڑا بندھا ہوا ہے، تو پھر میں اپنے سوال کو دوسرے انداز میں اٹھاتا ہوں۔ کیا آپ منوچہر تقوی کو جانتے ہیں؟ وہ بھی آپ کی طرح وکیل ہیں، صرف ایک چھوٹا سا فرق ہے، اور وہ یہ کہ ان کی وکالت کا لائسنس ابھی تک باطل نہیں ہوا ہے۔
اس کی وکالت باطل ہو گئی ہے؟ کیا اب یہ وکیل نہیں ہے؟
سلطانی صاحب کا وصیت نامہ میری وکالت کی پرمیشن کے باطل ہونے سے پہلے تیار کیا جا چکا تھا، لہذا اب بھی معتبر ہے۔
تو پھر میں کہہ سکتا ہوں کہ شاید آپ کا ہاتھ اتنا کھلا ہوا ہے کہ آپ چھوٹی موٹی معمولی چیزوں کو بدل سکتے ہیں۔
کہیں لوگ وصیت نامے کو بدلنا تو نہیں چاہتے؟
میں نے تو کہا تھا تم بہت سی چیزوں کو بھولے بیٹھے ہو۔
یہ کام غیر ممکن ہے، اور دوسرے یہ کہ اس وصیت نامے میں ایک قرض کا بھی ذکر ہے جسے ان کے وصی صادق صاحب کو پہلے ادا کرنا ہوگا، اور اس بات کا ان کو علم ہو تو پھر کچھ نہیں کیا جا سکتا۔
قرضہ کتنا ہے؟
جہاں تک مجھے معلوم ہے 200 کروڑ تمہارا.
200 کروڑ؟ حاجی اگر ایک پائی بھی قرضہ لیتے تھے تو مجھے علم ہوتا تھا. کیسے 2 ارب لے لیے مجھے معلوم نہیں پڑا.
اس بارے میں اب میں کیا کہوں؟ ان تمام باتوں کو ایک خط میں حاجی صاحب نے صادق صاحب کے نام لکھ رکھا ہے, جس کی جگہ وصیت نامہ پڑھنے کے بعد پتا چلے گی.
خدا تجھ پر لعنت کرے, سب کچھ تو نے بتا دیا اسے.
اگر صادق صاحب کو پتا چل گیا ہو تو آپ کی ساری کوششیں لا حاصل رہیں گی.
ویسے خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس سرمس کو علم نہیں ہے کہ میں اب تک صادق کو یہ باتیں نہیں بتا پایا ہوں, ورنہ اس وکیل کے ساتھ مل کر کسی نتیجے تک پہنچ جاتا.
مجھے بہت افسوس ہے لیکن اس سلسلے میں کچھ نہیں کیا جا سکتا. پھر بھی آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی.
کامیاب صاحب, ہماری یہ باتیں جو ہی ہیں.
آپ بالکل پریشان نہ ہو, ہم دونوں کے پاس چپ رہنے کے لیے بہت سے دلائل ہیں.
بہت شکریہ.
تم ٹھیک کہتے تھے کہ فرشتے بھی ہر چیز سے واقف نہیں ہوتے.
خدا حافظ. مت
کہہ رہے تھے کہ بہت برا خواب دیکھا ہے, صرف مرنے کی بات کر رہے تھے, اور یہ کہ مرنے کے بعد میں ان کے لیے کوئی کام کروں.
کیسا کام ہو مجھے
نہیں معلوم, یعنی کہنے کا موقع ہی نہیں ملا. کہا تھا بعد میں بتاؤں گا, کون سمجھ سکتا تھا کہ بعد ہی نہیں آئے گا اور اگلی ملاقات قیامت میں ہوگی.
کوئی اور کام تھا؟
کامیاب صاحب میں کہنا چاہ رہا تھا کہ اگر حاجی کو موقع نہ ملا ہو کہ صادق صاحب سے کچھ کہہ پائیں تو.
آپ شاید کے بھروسے کوئی شرط تو نہیں رکھنا چاہتے؟
اتفاق سے میں جوا کھیلنا بھی جانتا ہوں اور سامنے والوں کو پہچانتا بھی ہوں. بہرحال اس میں 2 صورتیں ہیں, یا تو ان سے کہا ہوگا یا تو کہنے کا موقع نہ ملا ہوگا. جہاں تک پہلی صورت کا سوال ہے تو پھر کوئی مشکل نہیں.
لیکن دوسری صورت میں بہت مشکلیں ہوں گی.
اس کے لیے راستہ سوچ
لیا. کیا سوچا ہے؟
میں آپ سے عرض کروں گا. دیکھیے کامیاب صاحب, فرض کیجئے کہ صادق صاحب کو اطلاع مل چکی ہو اور وہ بھی کچھ کہیں, تو کیا آپ یہ نہیں کر سکتے کہ کہہ دیں کہ حاجی نے خود ہی وصیت نامہ تبدیل کیا تھا, اور لیکن اس کی اطلاع دینے سے پہلے ان کے ساتھ وہ واقعہ پیش آ گیا اور وہ نہیں کہہ سکے, نہیں بتا سکے.
تو کیا آپ چاہتے ہیں کہ اگر اس کی حقیقت کھل جائے تو میں اس کا ذمہ دار بنوں؟
اتفاق سے اگر حقیقت کھل جائے تو میں بھی پھنسوں گا, چونکہ وصیت نامے میں تبدیلی میرے فائدے میں ہونے والی ہے. اور ہاں, ابھی مجھے یاد آیا کہ حاجی موت کے دن صادق صاحب کے پاس ان سے کوئی اہم بات کرنے والے تھے, لیکن چونکہ وہ حادثہ پیش آ گیا تھا تو وہ نہیں جا سکے, نہیں مل پائے. یہ بات خود حاجی صادق نے کہی تھی, سب رشتہ دار اس کے گواہ ہیں. آپ صرف ایک کام کریں گے اور وہ یہ کہ جا کر ہمارے رشتہ داروں سے مل کر کہیں گے کہ حاجی نے مجھ سے ایک بات کہی تھی کہ حاجی صادق سے جا کر کہوں.
دیکھو اس کے دماغ کہاں تک چلتا ہے. اگر کسی کو کچھ پتہ نہ ہو
کھڑے ہو کر کہیں گے کہ ہاں بھائی یہ بات صحیح ہے, کہنا چاہ رہے تھے, کچھ کہنا چاہ رہے تھے, بتانا چاہ رہے تھے, لیکن ان کو موقع نہیں مل سکا.
چلیے مان لیتے ہیں, لیکن اس میں بھی آپ ہی کا فائدہ ہوگا. مجھے کس کام میں آپ کی مدد کرنی چاہیے؟
آپ بالکل ٹھیک کہتے ہیں, یہ ہے اس کی وجہ. اسے کہتے ہیں پرفیکٹ نیگوشیشن. یہ لیجیے.
ارے کچھ تو کرے, اس کو راضی کر رہا ہے.
معاف کرنا حاجی, کچھ نہیں کیا جا سکتا.
کیا مطلب کچھ نہیں کیا جا سکتا؟ کیوں نہیں کیا جا سکتا؟
بلینک چیک.
رقم آپ خود لکھیں گے.
مت لکھو میرے بھائی, مت لکھو.
بہت زیادہ ہے, لیکن ٹھیک ہے. پہلے میری کہی ہوئی وصیت لکھو, اور پھر اصلی وصیت نامے سے ملا لینا۔